कैसी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्ग जीवन रोटी आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हमारे सभी श्रोता भाई बहनों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। हमें आशा है आप प्रभु की महान कृपा से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम नए नियम से कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखी गई प्रेरित पौलुस की प्रथम पत्री का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने इस पत्री के प्रथम अध्याय के 1 से 17 पदों का अध्ययन किया। आज हम इसके 18वें पद से अपने बाइबल अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। हमारा अध्ययन विषय होगा मसीह के क्रूस की सामर्थ्य। पिछले कार्यक्रम में हमने कलीसिया में फूट व लड़ाई झगड़ों के कारण के विषय में अध्ययन किया। प्रेरित पौलुस ने बताया कि किसी व्यक्ति विशेष की अपेक्षा क्रूसित मसीह यीशु महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर बलिदान किया, न कि किसी अन्य व्यक्ति ने। और हम मसीह यीशु के नाम से ही बपतिस्मा भी लेते हैं। जैसा कि यहाँ प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को समझाते हुए इस प्रकार लिखते हैं, तो क्या मसीह विभाजित हो गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम से बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैंने क्रिस्पुस और गयुस के अतिरिक्त तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, कि कोई मनुष्य ये ना कहने पाए कि मुझे पौलुस के नाम से बपतिस्मा मिला है। और 17वें पद में प्रेरित ने बताया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा है, कि वो भी वाक्पटुता के अनुसार नहीं, अर्थात मुंह की बकवास के द्वारा नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। सो यहां प्रेरित पौलुस इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सब बातों में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर दिया, न कि किसी अन्य व्यक्ति ने। और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा भी लेते हैं, और इस प्रकार बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति नहीं, ध्यान दीजिए, बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति नहीं वरन जिसके नाम से बपतिस्मा दिया गया है वो महत्वपूर्ण है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। मित्रों, कुरिन्थुस की कलीसिया में 3 व्यक्ति विभाजन का कारण बने हुए थे और इनके नाम क्रमशः पौलुस, अपोलुस और कैफा अर्थात प्रेरित पत्रस हैं। यद्यपि ये व्यक्ति कलीसिया के विभाजन में संलग्न नहीं थे, ये इस काम को स्वयं नहीं कर रहे थे और उनकी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी और न उन्होंने कलीसिया में ऐसा कोई कार्य ही किया था, किंतु कलीसिया के लोग स्वयं ही एक एक व्यक्ति को पकड़कर बैठ गए थे। और आज भी ये कारण विश्वासियों के समूह को विभाजित करने में अर्थात उसमें फूट डालने में आधार बना हुआ है। लोग अपनी पसंद के व्यक्ति को पकड़कर उसके पीछे हो लेते हैं और मसीह यीशु को छोड़ देते हैं। कलीसिया क्रूसित मसीह यीशु की ओर से अपना ध्यान हटाकर व्यक्ति विशेष पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रेरित पौलुस ने उनके ध्यान को व्यक्ति विशेष पर से हटाकर मसीह के क्रूस पर केंद्रित किया, उनके भीतर से समुदाय की भावना को समाप्त किया और उन्हें स्पष्ट रूप में समझाया। मित्रों, कुरिन्थुस नगर में वरन अनेक नगरों में मुख्य विषय दर्शन अर्थात फिलॉसफी हैं। वे लोग अपना अधिकांश समय इसी कार्य में व्यतीत करते हैं और उनका विशेष बल दर्शन शास्त्र पर है, पवित्र शास्त्र पर नहीं। और हम इस अध्याय में इसी बात को विशेष रूप से देखने जा रहे हैं। सो आइए आप हमारे साथ देखें पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18 से 25 पद। यहाँ 18वें पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। 17वें पद में प्रेरित पौलुस ने इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त किया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा है, वो भी वाक पटुता के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। और इस क्रूस के साथ ही वे अपने अगले वाक्य को प्रारंभ करते हैं, और उनका अगला वाक्य है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। मित्रों, इन पदों में हम क्रूस की सामर्थ्य पर विचार करेंगे। सो इससे पूर्व कि हम क्रूस की सामर्थ्य पर विचार करें, अपने मनो की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए जो आपने हमारे व्यस्त जीवन में हमको प्रदान किए हैं और हमको सुअवसर दिया है कि हम आपके क्रूस की सामर्थ्य को पहचान सकें। दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करें कि हम मसीह के क्रूस की सामर्थ्य को पहचानने तथा स्वीकार करने के योग्य ठहर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है या किसी घोर पाप में फंसा हुआ है या किसी चिंता या निराशा में डूबा है, प्रभु आप उसकी सहायता करने की कृपा करें, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, हमारे साथ आगे बढ़िए। पहला कुरिन्थियों के प्रथम अध्याय के 18वें पद में हमने देखा कि मसीह का क्रूस हमें एक विभाजक के रूप में दिखाई देता है। मसीह का क्रूस उद्धार पाए हुए व्यक्ति को बिना उद्धार पाए व्यक्ति से पृथक करता है। दूसरे शब्दों में मसीह का क्रूस विश्वासी को अविश्वासी से पृथक करता है। परंतु एक बात स्मरण रखें, मसीह का क्रूस विश्वासी को दूसरे विश्वासी से पृथक नहीं करता, वो अविश्वासी को मसीह यीशु के विश्वासी से अवश्य पृथक करता है। और यदि आप विश्वासी होकर विश्वासी से पृथक है, आपके मन में भेदभाव है, कलीसिया के लोगों के लिए आपके मन में कटुता है, तो आपको स्वयं की जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि मसीह का क्रूस विश्वासी को दूसरे विश्वासी से पृथक नहीं करता। वास्तव में ये मसीह के विश्वासियों को आपस में जोड़ता है, उन्हें संयुक्त करता है। सो मित्रों, एक बार एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया और उसने उस रचना का नाम अंतिम न्याय रखा, और इस चित्र में उसने परमेश्वर के सिंहासन को दर्शाया और उस सिंहासन से दूर पापी जन अंतरिक्ष में गिर रहे हैं। वे निरंतर गिरते ही जा रहे हैं और एक दूसरे से लिपटते जा रहे हैं। श्रोता, ये संसार का वास्तविक चित्र है। पापी और दुष्ट जन आपस में गिरते जाते हैं, पतित होते जाते हैं और आपस में संयुक्त होने में लगे हुए हैं। वे सब गठित होना चाहते हैं और इस अंतिम युग में वे अपना एक महान संगठन बनाना चाहते हैं, और ऐसे लोग कलीसिया में भी पाए जाते हैं। सभी दुष्ट जन मिलकर संगठित हो रहे हैं ताकि कलीसिया की सेवाओं में बाधा डालें और परमेश्वर के कार्यक्रम को तथा कलीसिया की प्रगति को रोक दें। मसीह का क्रूस विश्वासी जन को संगठित करता है, परंतु श्रोता, मसीह यीशु स्वयं को विभाजक कहकर संबोधित कर रहे हैं। आप लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 51 से 53 पदों को मेरे साथ देखें, जहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं को विभाजक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम सोचते हो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं, नहीं, वरन फूट डालने आया हूं। क्योंकि अब से जिस घर में 5 सदस्य हों, उनमें परस्पर विरोध होगा, तीन दो के विरुद्ध और दो तीन के विरुद्ध। वे एक दूसरे के विरोधी होंगे, पिता पुत्र का और पुत्र पिता का, माँ बेटी की और बेटी माँ की, सास बहू की और बहू सास की विरोधी होगी। इसका क्या तात्पर्य है मेरे मित्र? इसका तात्पर्य है कि जो प्रवेश मसीह को ग्रहण करेगा उसके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। परिवार के वे लोग जो प्रवेश मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे वो उसके विरोधी हो जाएंगे। और ये विभाजन रेखा मसीह का क्रूस है। कैसे, किस प्रकार? क्रूस का प्रचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। मसीह का क्रूस दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न महत्व रखता है। एक के लिए ये केवल मूर्खता की बात है, परंतु दूसरे के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। सामर्थ्य ये किस प्रकार से है? श्रोता, आपको और मुझे पापों से कोई नहीं छुड़ा सकता। शैतान के सामर्थी हाथों से कोई निकाल नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। कोई मुझे मेरे पाप के स्वभाव से, दोष की भावना से, पाप की लालसा से मुक्ति नहीं दिला सकता है, कोई नहीं छुड़ा सकता। यदि कोई छुड़ाने वाला है तो वो है केवल मसीह का क्रूस, अर्थात यीशु मसीह। आज मैंने और ना जाने कितने विश्वासी जनों ने अपनी दुर्बलताओं पर, अपने पुराने स्वभाव पर इस क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा विजय प्राप्त की है। मसीह के क्रूस ने हमें विजय और विजयी जीवन दिया है। इसलिए जब इस क्रूस की सामर्थ्य से हम शैतान के सामने इस आत्मिक युद्ध में विजयी होते हैं, तब ये क्रूस हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य बनता है और ये क्रूस हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। क्रूस के द्वारा और क्रूस के बिना, यहां दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में पाए जाते हैं। परंतु स्मरण रखिए, ये क्रूस नहीं है जिसके द्वारा हमें शैतान व मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह हैं, अर्थात वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रूस पर अपना प्राण दिया है। इस क्रूस को विश्वास लाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य बना दिया है। और पौलुस इस बात को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हैं, मेरा प्रचार मनुष्य तथा इस संसार के ज्ञान पर आधारित नहीं है, मैं केवल क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करता हूं। यही क्रूस उद्धार पाने वालों को संयुक्त करता है और इस प्रकार क्रूस इस पापमय संसार के मध्य विभाजक का कार्य करता है और इस संसार को दो समूहों में बांट देता है। एक वो जिनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता की बात है, और ये वो समूह है जो नाश होने वालों का समूह है, और दूसरे लोग वे हैं जो मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान पर विश्वास लाते हैं। इनके लिए क्रूस परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये वे लोग हैं जो उद्धार पाने वाले हैं, जो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और इस प्रकार मेरे मित्र, मसीह का क्रूस संसार को दो भागों में विभाजित करता है, परंतु ध्यान रहे, संसार को करता है, विश्वासियों को नहीं, विश्वासियों को यह संयुक्त करता है। तब 19वें पद में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानी, कहां रहा शास्त्री और कहां रहा इस युग का विवादी? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार यह संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को ना जान सका, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे। मित्रवर, यहां पर प्रेरित पौलुस स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है, और मनुष्य को अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचना असंभव हो गया और परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहरा दिया। और इसलिए परमेश्वर को यह अच्छा लगा, ये भाया कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे, अर्थात क्रूस की कथा के द्वारा। और इस प्रकार प्रचार की मूर्खता द्वारा विश्वास लाने वालों का उद्धार, ये एक अद्भुत बात है। ये कैसा विरोधाभास है? जिसे मनुष्य मूर्खता समझता है, उसी के द्वारा परमेश्वर विश्वास लाने वालों का, उनके पापों से छुटकारा करता है, उद्धार करता है। वास्तव में ये महान आशीष है, मनुष्य की समझ से परे है। तो अग्रिम पदों में प्रेरित लिखते हैं, क्योंकि यहूदी चिन्ह मांगते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों की दृष्टि में ठोकर का कारण और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है। प्रेरित स्पष्ट करते हैं कि यहूदी चिन्ह मांगते हैं और ज्ञानी और यूनानी लोग ज्ञान की खोज में लगे हैं, किंतु हमारे पास क्या है? हमारे पास है क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह, हम उसका प्रचार करते हैं। अब आप ध्यान दें, प्रेरित पौलुस संपूर्ण मानव जाति को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। ये एक महान जातीय समूह है, यहूदी तथा गैर यहूदी। सारा संसार दो भागों में बांट दिया गया। यहां यूनानी से तात्पर्य अन्य जातियां हैं और यहूदी जाति धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। यहूदी जाति धर्म का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि इसके पास परमेश्वर द्वारा दिया गया धर्म था, जैसा कि हम निर्गमन की तथा लैव्य व्यवस्था की पुस्तकों में पढ़ चुके हैं। धर्म का संबंध धर्म विधियों से है, उनको पूरा करना, उनका पालन करना ही धर्म है। और इसलिए यहूदी समझते थे कि उनके पास सत्य है और इस बात में कोई संदेह भी नहीं, परमेश्वर ने उन्हें सत्य दिया, क्योंकि पुराना नियम हमें ऐसा ही बताता है कि यहूदियों के पास परमेश्वर का सत्य है। परंतु समस्या ये थी कि यह उनके लिए केवल एक धर्म विधि मात्र बनकर ही रह गया। वे परमेश्वर के वचन की सत्यता से दूर हटकर, उसकी आत्मा से दूर हटकर परंपराओं के पीछे लग गए और वे इसी प्रकार परमेश्वर के वचन की व्याख्या भी करने लगे। उनकी व्याख्या आत्मिक न रहकर शारीरिक हो गई, मौखिक हो गई, और इस प्रकार वचन की सामर्थ्य उनके मध्य से चली गई। और इसलिए जब मसीह यीशु प्रकट हुए तो यहूदी जाति अपने पवित्र शास्त्र की ओर फिरने की अपेक्षा उनसे चिन्ह की मांग करने लगी। तब प्रवेश मसीह ने उन्हें एक ही चिन्ह दिया और वह चिन्ह योना का था, जिसे आप मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 38 से 40 पदों में पढ़ सकते हैं। योना का चिन्ह प्रवेश मसीह ने उन्हें अपने पुनरुत्थान के विषय में बताया। ये पुनरुत्थान का चिन्ह था, जिस प्रकार से योना मछली के पेट में रहा और तीसरे दिन वो जीवित होकर बाहर आ गया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी कब्र में रहे और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए। ये उनके पुनरुत्थान का चिन्ह था। यहां यूनानी लोगों से तात्पर्य है अन्य जाति लोगों से। यहूदी लोग धार्मिक लोग थे, यूनानी लोग ज्ञानवादी लोग थे। यूनानियों से तात्पर्य है अन्य जाति लोग। ये लोग दर्शन अर्थात फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहूदी धर्म के और अन्य जाति दर्शन के प्रतिनिधि हैं। वे बुद्धि तथा ज्ञान के प्रेमी थे। उनका कहना था कि हम इस प्रकार सत्य की खोज कर रहे हैं। यहूदी कहते थे कि हमारे पास सत्य है, परंतु वे उससे भटके हुए थे। अन्य जाति लोग सत्य की खोज में हैं। वे सत्य के लिए इस ब्रह्मांड की खोजबीन में लगे हुए थे। वे विचारशील लोग थे। अब जबकि यहूदी लोग धर्म विधियों के में आकर उलझ गए, तो अन्य जाति लोग अपनी कल्पनाओं तथा विचारों में उलझ कर रह गए थे। मसीह यीशु से 400 वर्ष पूर्व तक यूनानी सभ्यता अर्थात उनका दर्शन तथा कला विश्व इतिहास पर छाई हुई थी, और यह सब कुछ उस समय यूनान में विश्व प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, पेरिसिल्स, इस प्रकार के अनेक लोग पाए जाते थे। उन्होंने उस समय अनेक संप्रदायों अर्थात पाठशालाओं को जन्म दिया, परंतु इन दार्शनिकों के पास जीवन के प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। उनके पास इन समस्याओं का हल नहीं था। इसलिए पौलुस कहते हैं, कहां रहा ज्ञानी, कहां रहा शास्त्री और कहां रहा इस युग का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या अब भी ये लोग आपकी दृष्टि में ज्ञानी हैं? 24वें पद में पौलुस कहते हैं, परंतु उनके लिए जो बुलाए हुए हैं, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से अधिक बलवान है। तो आगे पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना बहुत शक्तिमान और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को, वरन उनको जो हैं भी नहीं, चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। अब ये पद आज मेरे और आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो। मेरे मित्र, आप जो कलीसिया के पासवान हैं, पदाधिकारी हैं, किसी मिशन स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रबंधक हैं, या किसी मिशन अस्पताल में उच्च पद पर हैं, अपने बुलाए जाने पर विचार तो कीजिए। आपकी क्या योग्यता थी मसीह की कलीसिया का सदस्य बनने की? क्या योग्यता थी यह आदर और सम्मान व उच्च पद प्राप्त करने की? तनिक विचार तो करें। क्या आप बहुत बुद्धिमान हैं? क्या बहुत शक्तिमान हैं? क्या बड़े कुलीन व्यक्ति हैं? मेरे मित्र, क्या आपको इस बात का एहसास है? क्या आप परमेश्वर के आभारी हैं? क्या आप नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की कलीसिया की सेवा कर रहे हैं? पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों और दुर्बलों को चुन लिया कि वो परमेश्वर की सेवा करें। मेरे मित्र, परमेश्वर ने उन्हें इसलिए चुना कि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर अयोग्य व्यक्तियों को पूर्ण योग्यता के साथ प्रयोग करने की सामर्थ्य रखता है, वो मूर्ख को बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करता है। और तब प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ये कार्य इसलिए करता है जिससे कोई व्यक्ति स्वयं पर घमंड ना करे और समस्त महिमा परमेश्वर को मिल सके। तब 30 और 31 पदों में लिखा है, परंतु उसी के कारण तुम मसीह में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा, कि जैसा लिखा है, यदि कोई गर्व करे तो वह प्रभु में करे। ये कैसी सुंदर बात है मेरे मित्र, ये प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति है। वो हमारी धार्मिकता की, हमारे ज्ञान की, हमारी पवित्रता, हमारे छुटकारे की पूर्ति है। मैं चाहता हूं कि वो आपकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति बन जाए। वो हमारी बुद्धि है, वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारी पवित्रता और हमारा छुटकारा है। मेरे विचार से और मेरा विश्वास है कि ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये आवश्यक है। वो चाहता है कि उसे बुद्धि मिले, धार्मिकता प्राप्त हो, पवित्रता मिले और उसका पापों से छुटकारा हो। और ये सब कुछ आपको प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होता है। प्रिय मित्र, आज जो भी आपकी आवश्यकता है, वो सब कुछ आप प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह सब कुछ उनके पास है। और तब प्रेरित कहते हैं कि हमारा गर्व प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। मेरे मित्र, क्या आप अपनी शिक्षा पर, क्या अपने उच्च पद पर, क्या अपने ज्ञान पर, क्या अपने धन पर, क्या अपने उच्च कुल पर, क्या अपने उच्च चरित्र व धार्मिक जीवन पर विश्वास करते हैं, उस पर घमंड करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह पर? अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। आमीन।
जीवन में, जीवन मेरा कैसा होता, निर्बिन नदिया, बिन फूल बगिया, जीवन मेरा कैसा होता, तू ना आते। संसार के माया मोह में तृप्ति मिली ना आनंद पाया। इस संसार के माया मोह में तृप्ति मिली ना आनंद पाया। तुमको पाके सब कुछ पाया, तुम ना मिलते तो क्या होता, तुम ना आते। कितनी बार अंधेरा छाया मेरे इस जीवन में सूझी, कितनी बार अंधेरा छाया मेरे इस जीवन में सूझी। तुमने आके ज्योति दिखाई, तुम ना आते तो क्या होता। निर्बिन नदिया बिन फूल बगिया जीवन मेरा ऐसा।
प्रिय श्रोताओ, अभी आपने हमारा ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन सुना। निश्चय ही हमारा ये बाइबल अध्ययन आपके जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। यदि आप परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, एक बार हम फिर से बता दें कि आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi.ttb@radiovv.org, hindi.ttb@radiovv.org। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।